قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إرشاد ہے کہ جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں، علم نہیں، اس کے پیچھے مت پڑو. یقیناً کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا. مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جو بات صحیح صحیح معلوم ہے اس کا تذکرہ کر لے، بتانا ہے لوگوں کو بتا دے اگر ضرورت ہے تو. لیکن جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے چکر میں مت پڑے. جو سنا نہیں وہ سنائے، جو دیکھا نہیں وہ بتائے، جو جانتا نہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے. تو یہ ہے کذب. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سب کے بارے میں پوچھیں گے، دل کا حال کیا ہے، آنکھوں کا حال کیا ہے، کانوں کا حال کیا ہے، کتنی خلاف واقعہ باتیں کہی گئیں جو نہ دیکھی گئیں نہ سنی گئیں نہ ان کا کچھ پتہ چلا، اپنے فائدے کے لیے اور بعض مرتبہ صرف چٹخارے کے لیے. یہ مزاج ہوتا ہے انسان کا کہ اس کو چٹخارے میں بھی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، چٹخارے کے لیے باتیں کرتا ہے، نمک مرچ لگاتا ہے، ادھر ادھر کی اڑاتا ہے. محض مزہ پیدا کرنے کے لیے، تفریح کے لیے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو فرمایا کہ جس کا تمہیں پتہ نہیں اس کے چکر میں مت پڑو، اس کے پیچھے مت پڑو. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو زیادہ ٹوہ میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. جو باتیں معلوم ہیں ان کو بیان کرنے کی کہیں ضرورت ہے، کہیں کوئی اس سے پوچھ رہا ہے، ایک امانت کے طور پر بیان کرنا، اس کو بیان کر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بطور امانت کے پوچھتا ہے، اس کو اپنی بچی کی شادی کرنی، اپنے بچے کی شادی کرنی، رشتہ دینا، یا کوئی معاملہ کرنا، اس کو ملازم رکھنا، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیسا آدمی ہے یا جس سے رشتہ کرنا ہے اس کا حال کیا ہے. تو وہ ان لوگوں سے دریافت کرتا ہے جو اس کے قریب ہیں. تو یہ بطور امانت کے وہ سوال ہے، اور جواب بھی بطور امانت کے اس کو دینا چاہیے. اب اس میں بھی بھائی جتنا جانتا ہے اتنا بیان کر دے، جو نہیں جانتا ایسی بات کہتا ہے یہ تو جھوٹ اور فریب بھی ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا بھی ہے. چاہے وہ تعریف کر کے ہو اور چاہے وہ برائی کر کے ہو. بھائی تمہارے تم سے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو جتنا پوچھا جا رہا ہے اتنا بتا دو، جتنا تم جانتے ہو اتنا بتا دو، اس میں آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو جو آدمی نہیں جانتا اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، جتنا جانتا ہے اتنا اگر ضرورت ہے تو بتا دینا چاہیے، اور اس میں امانت کا خیال رکھنا چاہیے. نیکی یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی کوئی امانت کے طور پر پوچھ رہا ہے، اس کو شادی کرنی ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، آپ جانتے ہو کہ وہ آدمی دھوکے باز، بتایا آپ جانتے ہو کہ اس کے مزاج میں انتہائی غصہ ہے، اب آپ سے پوچھا گیا تو آپ اس کو ٹال لیں، یہ بھی مناسب ہے. آپ اس کی حد تک وہ بات اس کو بتا دو کہ بھئی میں اتنا جانتا ہوں، لیکن اس میں قطعاً کذب نہ ہو، دشمنی نہ نکالی جائے کہ ہاں آج موقع ملا ہے، دیکھیں کیسے رشتہ ہوتا ہے. तो ये तो इंतहाई गुनाह की बात है, किसी को नुकसान पहुंचाना, इंतकाम लेना, ये मुनासिब नहीं। तो जितना जानता है आदमी उतना बताए। और ये भी इसमें दो सूरतें होती हैं। एक सवाल होता है जरूरत का, जहां जरूरत का सवाल है वहां तो पूरी पूरी बात बताए, अगर कोई गलत चीज देखी है तो वो भी बताए। हदीसों में इसका जिक्र भी आता है। एक जगह ऐसे ही रिश्ते की बात चली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इशारा फरमाया, जब पूछा गया फलां के बारे में, रिश्ते के बारे में जिक्र आया कि उनसे रिश्ते का इरादा है, तो फरमाया कि वो तो लाठी रखते ही नहीं, यानी वो तो लाठी हाथ में रहती है, मतलब ये है कि मिजाज बड़ा सख्त है। इशारा फरमा दिया आपने ताकि जानने वाला, रिश्ता करने वाला समझ ले, धोखा ना खाए। बाद मरतबा ऊपर से आदमी बड़ा अच्छा मालूम होता है, लेकिन जो लोग अंदर से वाकिफ नहीं वो धोखा खाते हैं। ऊपर से बहुत अच्छा मालूम होता है, अंदर से हालात बहुत खराब होते हैं। तो अब अगर कोई जानता है और कोई मामला करने वाला उससे पूछ रहा है बतौर अमानत के, तो अमानतदारी का तकाजा ये है कि पूरी पूरी बात बता। अल मुस्तशारु मुतमनु, जिससे मशवरा लिया जा रहा है वो अमीन है, उसको चाहिए कि अमानत के साथ पूरी बात पहुंचाए। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि तफरीह के तौर पर बैठकर मजलिस में उसका चर्चा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई ऐब भी है तो उसका चर्चा ना किया जाए, ये गीबत है। अब दो बातें अलग अलग हो गई। जहां जरूरत है बतौर अमानत के कोई बात कहनी है तो बेकमो कास्त वो बात कह दी जाए, लेकिन बस अल मजारी सुबिल अमाना ये भी है, जिससे बात कही जा रही है वो हंगामा मा पीटे, वो मालूम करना चाहता है, उससे बताने वाले ने बतौर अमानत के वो बात पूरी पूरी बता दी तो बस वहां तक रहे, वो मामला नहीं ना करे, रिश्ता करना था उसको रिश्ता ना करे, लेकिन उसका हंगामा ना करे। हाँ फला तो ऐसा कह रहे थे, फला ऐसा है, मजलिसों में उसको मौजू बनाया जा रहा है, ये जायज नहीं है, इसका नाम गीबत है। तो दो सूरतें अलग अलग हैं। एक सूरत है जरूरत की, तो जहां जरूरत है वहां वो पूरी पूरी बात बता दी जाए और जिसने बात सुनी है उसको अमानत की हद तक रखे, और जहां जरूरत नहीं है वहां अगर किसी का ऐब बयान किया जा रहा है तो उसका नाम है गीबत, ये दुरुस्त नहीं। मजलिसों में उसको मौजू बनाया जा रहा, बैठे हैं मजा आ रहा है, ये अजीब गरीब बात है। मजलिस में जब आदमी बैठता है, मजलिस होती है दोस्तों की, मजलिस थोड़ी सी तफरी करने वालों की, जब तक गीबत ना हो उस वक्त तक मजलिस में नमक ही नहीं पड़ता, चटखारा ही नहीं मजलिस का जब तक गीबत ना हो। और इसमें कोई तफरीक नहीं। कल बात आ रही थी फजाइल में, अच्छे अच्छे दीनदारों का हाल यह है कि गीबत में मुब्तला होते हैं, और उस गीबत के बारे में भी अजीब बात है कि उस पर पर्दे डाल दिए जाते हैं। ये वाकईतन हम सब मुब्तला होते हैं उसमें, और पर्दे डाल दिए जाते हैं ये कहकर कि हाँ ये तो वाकई ऐसा है और जरूरत है कहने की, बताने की जरूरत है। यह है बड़ा नाजुक मामला। जरूरत कहीं होती है, जरूरत वहां भी थी। हजरात मुहद्दिसीन किराम ने जब रिवायत करने वालों की हकीकत बयान की, फला साहब झूठे हैं, फला साहब हदीसें गढ़ते हैं, फला साहब बड़े बुजुर्ग हैं लेकिन हाफजा कमजोर है, ये सब कुछ बयान किया गया। क्यों बयान किया गया? वहां जरूरत थी। ये वो लोग थे कि जिनसे लोग दीन सीख रहे थे, हदीसें सीख रहे थे। अब अगर बात वाजे ना की जाती तो लोग धोखे में पड़ जाते। दूध का दूध पानी का पानी कर दिया गया, दज्जाल बताया अपने वक्त अइम्मा, उन्होंने कहा कि अरे फलां दज्जाल है, उसके चक्कर मत पड़ना, ऐसे हदीसें सुनोगे आज, वहां जरूरत थी। इस तरह की जहां दीनी जरूरत हो वहां बयान करना पड़ता है, वो एक शराई तकाजा है। लेकिन इस फर्क को कौन समझेगा कि यहां जरूरत है और यहां जरूरत नहीं है, ये बड़ा नाजुक मसला है, इसमें बहुत धोखा होता है। तो इसलिए जब तक जरूरत शदीदा समझ में ना आए उस वक्त तक बेहतर है कि दूसरों की गलतियों को उछाला ना जाए। और खास तौर से जो कहने वाला है गौर कर ले कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। अक्सर ये होता है, दो उसके असबाब होते हैं, या तो दुश्मनी होती है, अंदर की कद होती है, कोई हसद की बात होती है, उसको नीचा दिखाना मकसूद होता है, तो आदमी तरह तरह की बातें करता है, और या बस महज तफरी मकसूद होती है, तफरी भी है ये। लोग बैठे हुए थे, मुझे मतलब याद पड़ता है मुख्तलिफ लोगों का जिक्र हो रहा था, बस ऐसे ही फला ऐसा फला ऐसा फला ऐसा, तेरे साहब बोले भाई अजान होने वाली है, फला साहब रह गए, जल्दी से उनकी गीबत कर लो, वो क्यों रह जाए। उन्होंने तंज किया, किसी को छोड़ोगे बस यही होता रहेगा। ये मिजाज लोगों का होता है, और खासतौर से नौजवानों का, नौखेज नौजवानों का, उनको बड़ा मजा आता है, वो तो किसी को नहीं छोड़ते, न उस्ताद को, न शेख को, न बुजुर्ग को, न आम को, न खास को। तो ये मर्ज है। तो कहने का मकसद ये है कि आदमी अगर किसी के बारे में बात कहनी भी है तो इसमें समझ लेना चाहिए कहाँ तक जरूरत है और कहाँ तक वो अपनी अंदर की भड़ास निकाल रहा है या तफरी करना चाहता है। तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है। फरमाया वाला तक्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, इसका तुम्हें पता नहीं है उसके चक्कर में मत पड़ो। ये आमतौर से ये भी मिजाज में बात होती है, कोई छोटी सी बात कभी सुन ली, अब उसके बाद उसका बतंगड़ बनाया जा रहा है, वो तो ऐसा भी मैंने देखा था, और हाँ फला ऐसा भी कह रहे थे, और फला ऐसा भी कह रहे थे, तो उसके बाद गीबत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जबान की हिफाजत होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन सब अवल बसर अवल फुआद कुल उलाइक काना अनहु मसूला, आंखों के बारे में पूछा जाएगा, कानों के बारे में पूछा जाएगा, आंखों के बारे में पूछा जाएगा, दिल के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह के यहाँ सबके बारे में सवाल होगा, अल्लाह के यहाँ सबके बारे में सवाल होगा। इन आज़ा का जो इस्तेमाल हो रहा है, आदमी सोचे किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक ना दुरुस्त है, कानों में क्या क्या बातें पड़ रही हैं। गीबत का करना भी ना जायज, गीबत का सुनना भी ना जायज। आदमी वहां मजलिस में बैठे, गीबत हो रही है, और आराम से मजे ले रहा है, सुन रहा है, मजे ले रहा है, तो वो भी उस जुर्म में शरीक है। उसको चाहिए था कि रोकता, और अगर मुमकिन नहीं था, उसके बड़े थे, वो जानता है कि नहीं रोक सकता, तो वहां से उठ जाना चाहिए, उसे वहां से उठ जाना चाहिए। हज़रत बहा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताते थे हमारे फूफा होते, बड़े फूफा हज़रत माँ के दोस्त थे मुस्लिम साहब, कि हज़रत माँ जब बस जरा भी उम्र हुई और बिल्कुल नौखेजी का जमाना, सबको मजा आता है इधर उधर की बातें कर रहे, तो हम लोग देखते देखते थे अलीमिया बैठे हैं, बातें हो रही, और जहाँ की गीबत गीबत की बात शुरू हुई, देखा वो गायब, अरे कहाँ चले गए, लगता किसी ने कोई गीबत की। बस ये मिजाज होना चाहिए कि आदमी ना गीबत करे ना गीबत सुने। कान के बारे में भी सवाल होगा, ना गीबत सुने, ना चुगली सुने, ना इधर उधर की बातें सुने, ना फहज गोई सुने, यानी वो तमाम चीज़ें जो दुरुस्त नहीं है, जिनका सुनना जायज़ नहीं है। लोग गाने सुनते हैं, स्टोरियां सुनते हैं उल्टी सीधी, तो ये सब गुनाह की चीज़ है। और कानों में इस तरह की जो बातें बिलकस्द जा रही हैं, उनका कल क़यामत में सवाल होगा। ऐसे ही फरमाया कि आंखों के बारे में सवाल होगा, ये आंख तो बड़ी खतरनाक चीज है, किधर जाए और क्या देखे। और उसमें हदीसों में आता है कि इबलीस के तीरों में से ही सबसे पहला तीर है, शिकार यहीं से करता है, पहले तो आंख ही पड़ती है, आदमी देखता है, और उसके बाद गलत ख्यालात पैदा होते हैं, और उसके बाद फिर वो बात आगे बढ़ती है। वहां अगर रोक लगा दे पहले मरहले पर, तो ये हिफाजत का रास्ता है, और ये ईमान की सलामती का रास्ता है, और इसके जरिए से अल्लाह ताला दिल के अंदर ईमान की हलावत उतारते हैं। जब आदमी अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, तो सबसे बढ़कर इससे ईमान की हलावत नसीब होती है और गुनाहों से बचना भी आसान होता है। लेकिन है मार का ही, ये भी एक मुकाबला है। आदमी जब देखता है, निगाह पड़ती है, जाहिर है कि उसके बाद जी चाहता है कि और देखें, और देखता चला जाता है, और उसका नतीजा जो होता है वो नहायत खतरनाक होता है। अगर जैसे कि हदीस में आया कि निगाह पड़ी, तो जाहिर निगाह का पड़ गई तो अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ नहीं है, लेकिन उसके बाद फौरन वो निगाह हटा ली जाए, फौरन वो निगाह हटा ली जाए। अगर पहले मरहले में निगाह पड़ी और हटाई नहीं गई, या दोबारा उसने देखा, नामहरम की तरफ देखा, गलत ख्यालात पैदा हुए, तो ये चीज़ ऐसी है कि बस उसके बाद इबलीस को मौका मिल जाता है, गोया कि उसका तीर निशाने पर लग गया, उसका तीर निशाने पर लग गया, अब वो आगे शिकार करेगा और आदमी फिर ढेर होता चला जाएगा, फिर उसका बचना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर पहले मरहले में उसने अपने आप को काबू में कर लिया, मुकाबला कर लिया, तो आगे आसान है। तो निगाह के बारे में भी सवाल होगा, क्या देखा, बहुत ज़्यादा देखना भी नहीं चाहिए। हमारे हजरत जी के हमें बार बार मिसालें याद आती हैं, उन्हीं को हमने देखा, जिंदगी उनके साथ शुरू की गुजरी, गुजरते थे तो हमेशा हमने देखा, उनको पता ही नहीं चलता था कि दाएं बाएं क्या हो रहा है, कभी देखते ही नहीं थे, नीचे देखते हुए चले जाते थे। वरना आम इलाज होता है, हम सब गुजरते हैं, दाएं बाएं देखते हैं क्या हो रहा है, हजरत वहां गुजरते थे कभी नहीं देखते थे क्या हो रहा है, ये दुनिया से मतलब ही नहीं है उनको, आदमी महफूज रहता है, वह सलामती का रास्ता है ये। इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी गाफिल हो जाए, आंखें बंद कर ले, ऐसा भी मुनासिब नहीं, वो उसमें धोखे में पड़ जाएगा। निगाहें खुली रखे, लेकिन क्या देखना है क्या नहीं देखना, हर चीज़ को नहीं देखने की जरूरत, जो चीज़ें देखने की देखे, जो नहीं देखने की ना देखे, लेकिन ज़्यादातर ना देखे तो आफियत, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर देखें, और कम से कम वाकफियत हालात के बारे में होनी चाहिए, इसलिए कि हालात से वाकफियत अगर नहीं होगी तो हो सकता है कहीं चक्कर में पड़ जाए, कोई शिकार कर ले उसको, तो वो भी मुनासिब है। लेकिन क्या देखना है क्या नहीं देखना है, इसका फर्क मदहूज रहना चाहिए। कल क़यामत और फिर पूछे फरमाया कि दिल के बारे में भी सवाल हो, दिल किधर जा रहा है, दिल में क्या ख्याल आ रहे हैं, दिल क्या फैसले कर रहा है, इसकी तनकीद दिमाग करेगा आगे चलकर। बादशाह तो दिल है, दिल जो फैसले करता है, बादशाह वो बादशाह है, दिमाग उसका वजीर आजम है, वो उसकी तनफीज करता है, उसके बाद कुव्वत मुनफ़िज़ा है, दिल फैसला करता है, दिमाग उसकी तनफीज करता है, वो उसके लिए असबाब तलाश करता है। दिल चाह रहा है कि हम फला काम करें, अब कैसे करना है, दिमाग उसके राह निकालेगा, दिमाग उसके रास्ते तलाश करेगा कि हाँ ये इस तरह हो सकता है, अब वो गलत सही वो एक अलग बात है। तो दिल जो बादशाह है, इसकी बड़ी कीमत है, इस पर भी मेहनत करने की बड़ी ज़रूरत है कि दिल में अगर गलत ख्याल आएंगे और दिल गलत रास्ते की तरफ ले जाना चाहेगा तो उसके लिए बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दिल को काबू में रखना भी ज़रूरी है, दिल के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सवाल होगा। और ये दिल तो वो है कि ये सबसे बुनियादी चीज़ है, हदीस में आता है इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु, कि अगर दिल ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक हो जाता है, और अगर दिल बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। इस ज़ाहिरी जिस्म के एतबार से भी आदमी देखिए, अगर दिल काम ना करे तो जिस्म फेल हो जाए, और दिल सही चल रहा है तो जिस्म सही चल रहा, और बातिनी एतबार से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर दिल ठीक है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, दिल में शरीयत की अज़मत है, शरीयत का एहतराम और ताज़ करने का जज्बा है, तो उसका जो पूरा जिस्म है वो उसकी ताबेदारी करता है, वो शरीयत के सांचे में ढलेगा। और अगर दिल में वो ख्यालात नहीं हैं, गलत ख्यालात दिल के अंदर आ रहे हैं और गलत रास्ते की तरफ दिल उसको ले जा रहा, तो जिस्म तो दिल का ताबे है, जो फैसला दिल करेगा जिस्म उसके मुताबिक अमल करेगा। तो इसलिए दिल का मसला बड़ा है, और दिल के बारे में भी अल्लाह ताला कल सवाल करेगा, अल्लाह के गिरफ्त दिल की। हाँ, ये बात कही गई हदीसों में कि जो वसवसे आते हैं, लेकिन वसवसे आने के बाद वसवसे निकाल दिए जाते हैं, उन पर कोई सवाल नहीं, अल्लाह के उनकी पकड़ नहीं होगी। लेकिन अगर कोई जो वसवसे आ रहे हैं उन वसवसों पर वो आज़म कर लें, कुछ करने का इरादा कर लें, या उन वसवसों से वो फायदा उठाने लगे तो फिर ये खतरे की बात है, वहां उसकी गिरफ्त हो। इसलिए अब वो वसवसा वसवसा नहीं रह गया, वो अमल हो गया। इसलिए अमाल जो होते हैं वो जिस्म के भी अमाल होते हैं और दिल के अमाल भी होते हैं। जैसे बोझ है, कीना है, हसद है, रियाकारी है, ये सब क्या है? ये भी तो अमाल हैं, लेकिन ये किसके अमाल हैं? ये अमाल दिल के। हसद करता है आदमी दिल से करता है, फिर उसका मुजाहरा होता है जिस्म से। बोझ होता है दिल से, उसका मुजाहरा होता है जिस्म से। रियाकारी होती है दिल से और कभी उसका मुजाहरा होता है जिस्म से। आदमी नमाज पढ़ रहा है, बाद में फला साहब देख रहे हैं, अब उससे और ज्यादा खुशोखुशू पैदा कर लिया गया, क्या और बुजुर्ग समझा जाऊं मैं। अव्वलन जो रियाकारी पैदा हुई वो दिल से पैदा हुई, उसका महल कल्ब है, और उसके बाद फिर जिस्म ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। तो ये जो बहुत से अमाल हैं जिनका ताल्लुक बातिन से है, उसका महल दिल है। तो दिल को सलामत रखना, दिल को काबू में रखना, ये सबसे पहला मरहला और सबसे अहम मरहला है। और जिक्र वगैरह का फायदा यही होता है, जिक्र आदमी करता है और दिल पर ज़रबें लगाता है, अल्लाह अल्लाह की दिल पर ज़रबें लगाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता है और दिल को उसमें मशगूल करता है, तो उससे दिल संवरता है। हजरत मौलाना फरमाते थे कि दिल की हैसियत जमीन की है, जैसे जमीन होती है वैसे ही दिल है, उस पर तुम जैसी मेहनत करोगे वैसी बरगुबार लाएगी। वैसे दिल की जमीन पर जैसी मेहनत की जाएगी वैसे ही दिल बरगुबार लाता है। जब दिल पर ऐसी मेहनत की जाएगी, हल चलाया जाएगा, उसकी जमीन को नर्म किया जाएगा, उसमें अच्छे बीज डाले जाएंगे, फिर उस पर उसकी आबियारी की जाएगी, तो अच्छे अखलाक पैदा होंगे, अच्छी सिफात पैदा होंगी, अच्छे आमाल का जहूर होगा। और अगर उसको बंजर जमीन की तरह छोड़ दिया जाएगा तो जाहिर है कि उसके नतीजे में कांटे पैदा होंगे और वो बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाएगी जमीन, और उसका नतीजा फिर जिस्म की बुराइयों की शक्ल में जाहिर होगा, आदमी गलत रास्ते की तरफ जाएगा। तो फरमाया कि इन सब के बारे में पूछा जाएगा, और आम तौर पर आदमी जो जबान का गलत इस्तेमाल करता है उसमें इन सब का हिस्सा होता है। जबान कान कोई बात उड़ती हुई सुन लेता है, आंख कोई चीज दूर से देख लेती, दिल में बार बार चीजें आ जाती, जबान फौरी तौर पर उसका मुजाहरा शुरू कर देती और उसमें मुबालगे के साथ बात कहना शुरू कर देती। कहते हैं ना, जबान क्या है? जबान दिल का चमचा है, जो दिल में होता है उसको निकाल के बाहर लाती है। जैसे आदमी चमचे से हांडी से निकालता है सालन या खाना, अंदर है वो उसको बाहर ले आया। इसी तरह जो जबान है वो दिल के ख्यालात को बाहर लाती है। अब फैसला ये करना है क्या लाना है क्या नहीं लाना, क्या रखना है क्या नहीं रखना, ये मसला अहम है। दिल में जो गलत ख्यालात आ रहे हैं, ख्यालात आना बुरा नहीं है, आ सकते हैं, लेकिन ख्यालात को आगे बढ़ा दिया जाए। कहते हैं दिल क्या है? दिल जो है एक सड़क की तरह है, ट्रैफिक चल रहा है, एक गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी आ रही, तीसरी गाड़ी आ रही, ट्रैफिक अगर जाम हो गया तो मुसीबत आ जाएगी। ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, जो आ रहा है उसको आगे जाने दो, उसको मत रोको। अल्लाह की मोहब्बत है, अपने दिल की सड़क को सलामत रखो, उसमें गढ़े मत पैदा करो। ज्यादा बड़े बड़े गढ़े पैदा हो गए तो ट्रैफिक जाम हो जाए। ये अल्लाह की मोहब्बत है जिससे दिल की जो जमीन है वो हमवार रहती है। ख्यालात आते हैं और सट से निकल जाते हैं, गलत ख्यालात आते हैं, आना कोई मायूब नहीं है, लेकिन उनका बाकी रखना, वो गाड़ी खड़ी कर ली तुमने वहां पर तो मुसीबत हो जाएगी, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा, उसको आगे जाने दो। तो इसीलिए बात भी आती है हदीसों में कि जो ख्यालात आते हैं बुरे, वो उनको आदमी बुरा समझ रहा, उनको फौरी तौर पर जहन से निकाल रहा है, तो ये तो ईमान की अलामत है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में से बाज़ों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, बाज़ मरतबा ऐसे ख्यालात आते हैं उनका इजहार करना मेरे नजदीक कोयला बन जाने से ज्यादा बुरा है। मैं कोयला बनकर खाक हो जाऊं, जल जाऊं, ये मुझे पसंद है इसके मुकाबले में कि मैं उन ख्यालात को अपनी जबान पर लाऊं। आपने फरमाया तुम उन ख्यालात को बुरा समझते हो। उन्होंने आज के अल्लाह के रसूल यही तो अर्ज कर रहा हूं कि कोयला बन जाना ज्यादा मुझे पसंद है। फरमाया कि यही तो आयन ईमान, یہی عین ایمان ہے کہ اگر آدمی کے کو خیالات آ سکتے ہیں, برے خیالات آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں, کفر کے بارے میں, شرک کے بارے میں, پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں, ان خیالات کو وہ برا سمجھ رہا ہے, تو بس یہ ایمان کی علامت ہے. اور اگر خدا نہ خاص طور اس میں غور کرنے لگا تو یہ خطرے کی چیز ہے, یہ خطرے کی چیز ہے. شیطان کہاں کہاں سے آدمی کو بہکاتا ہے, فلاں چیز سے پہلے کیا چیز, وہ لے جاتا ہے کہاں تک, اور اللہ سے پہلے کیا. اب یہاں آدمی کی عقل جب پہنچی اور وہاں سے سوچنا شروع کیا تو اس کو گمراہی کی طرف لے جائے, اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گا. کسی بزرگ سے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال یہی کیا گیا تھا, اللہ سے پہلے کیا ہے, انہوں نے الٹی گنتی گنوا دی. انہوں نے کہا بتاؤ, چار سے پہلے تین, تین سے ہاں ہوتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں اس سے پہلے کچھ ہوتا ہے, دس سے پہلے نو, نو سے پہلے آٹھ, آٹھ سے پہلے سات, یہاں سے تین, اور تین سے پہلے دو, دو سے پہلے ایک, لیکن ایک سے پہلے کیا ہوتا ہے, نہیں تو آخری گنتی ہے, اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں, اس سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں. تو فرمایا وہ تو آخری ہے, وہی اول وہی آخر, وہی ظاہر وہی باطن, وہ تو اول بھی ہے آخر بھی ہے, اس سے پہلے ہے نہ کچھ نہ اس کے بعد کچھ ہے. تو جیسے ایک سے پہلے کچھ نہیں, وہ بھی ایک ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں, وہ اول وہی ہے. تو اس طرح کے خیالات بھی آدمی کے اندر آتے ہیں. اب ان خیالات میں آدمی غور کرنے لگے, اللہ کی ذات کے بارے میں غور کرنے لگے, تو پھر وہ بہک جائے گا, وہاں اس کو روکنا چاہیے. تو خیالات کا آنا برا نہیں ہے, لیکن ان خیالات کو باقی رکھنا, ان میں غور کرنا, جو غلط خیالات ہیں, یہ گناہ کی بات ہے. ایسے ہی اگر فحش خیالات آ رہے ہیں, فحش خیالات آ رہے ہیں اور آدمی ان میں مزے لے رہا, تو یہ گناہ کی بات ہے, یہ گناہ کی بات ہے. خیالات کا آنا غلط نہیں, خیال فوری آتا ہے لیکن اس کو فوری نکالنا ضروری ہے. وہ نکل گیا, معاملہ صاف, سڑک پھر صاف ہو گئی, اور اگر تم نے گاڑی روک دی تو وہاں معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو دل کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں سوال کریں گے. تو دل کی سلامتی بہت بڑی چیز ہے, دل کی سلامتی پر منحصر ہے پورے جسم کی سلامتی. پھر آدمی کی آنکھیں بھی سلامت ہیں, پھر آدمی کی زبان بھی سلامت ہے, اس کے کان بھی سلامت ہے. لیکن اگر دل سلامت نہیں ہے اور وہ غلط کارروائی کر رہا ہے, تو سارے اعضا ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں دل کے سامنے کہ حضور فرمائیے کیا حکم ہے, جو دل کہتا ہے وہ سب کرتے ہیں. اگر دل سلامت نہیں تو کوئی سلامت نہیں, اور اگر دل سلامت ہے تو پھر سب سلامت ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اس حدیث میں راستہ بتایا گیا, صحیح راستہ, صحیح زندگی گزارنے کا راستہ, اور وہ بنیاد ہے سچائی. آدمی جب سچائی کی بنیادوں پر چلتا ہے تو اس کی زندگی سنورتی ہے, اور جب وہ جھوٹ کی بنیادوں پر چلتا ہے تو اس کی زندگی بگڑتی ہے. حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو سچائی کو لازم پکڑو, علیکم بالصدق, سچائی کو لازم پکڑو, اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. گویا کہ یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ اگر آدمی اس بنیاد پر اپنی گاڑی چلائے گا, اپنی بنیاد پر زندگی گزارے گا, اس پٹری پر اپنی گاڑی چلائے گا تو وہ منزل تک جائے گا, اور اگر اس پٹری سے ہٹے گا تو اس کی گاڑی پھر ادھر جائے گی, الٹ جائے گی. گاڑی پٹری پہ چلتی, جہاں گاڑی پٹری سے ہٹی ٹرین, تو الٹ جاتی, سلامت نہیں رہتی. اور جب تک پٹری پہ ہے تو سلامت ہے, اور یہ پٹری جو اللہ نے اس کو دی ہے یہ سچائی کی پٹری ہے. سچائی ایسی چیز ہے کہ اس سے آدمی بہت سے گناہوں سے بچتا ہے, اور اگر سچائی مزاج میں نہ ہو تو آدمی ہزار گناہ کرتا ہے, ایک گناہ کے بعد دوسرا کرتا ہے پھر تیسرا کرتا ہے. ایک بزرگ کے پاس کوئی صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت شراب نہیں چھوٹتی, توبہ کرو, کوشش کرو. کہا بہت کوشش کی, بہت توبہ کی. کہہ رہے دوبارہ توبہ کرو اور اپنا حال ہم کو بتا دیا کرو, شراب تم نے پی ہے تو ہمیں بتاؤ کہ تم نے شراب پی ہے. लेकिन एक बात याद रखो, कभी झूठ ना बोलना। अगर झूठ बोलोगे तुम्हारी कभी इसलाह नहीं होगी। तो उन्होंने शुरू किया, अब जाहिर शर्म आई, कुछ दिन कहते रहे, फिर अभी आखिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुसीबत से उनको छुट्टी मिली। लेकिन आदमी झूठ का जब सहारा लेता है तो फिर इसलाह बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए कि वो हीले हवाले करता है। भाई झूठ तो दिल से मुताल्लिक भी है, और हीले हवाले जब वो शुरू करता है तो फिर कभी भी उसका रास्ता सही नहीं होता। तो ये सच्चाई ऐसी चीज है कि इससे आदमी को सही रास्ता मिलता है, ये बुनियाद है खैर की। और सबसे ज्यादा इस जमाने में जो चीजें आम हो रही हैं उनमें झूठ है, और वो झूठ में फिर बड़ा और छोटा और अंदर का बाहर का कुछ नहीं रह जाता। आदमी ये देखता है कि हमारा फायदा कहाँ है, फायदा दौलत का हो, और उससे आगे की बात है कि फायदा इज्जत का हो, उस फायदे के लिए फिर आदमी सब कुछ करता है। और सबसे बढ़कर वहां जो उससे गलती होती है वो ये होती है कि वो झूठ का सहारा लेता है, और झूठ के जरिए से अपनी दौलत बढ़ाता है, और झूठ के जरिए से अपनी इज्जत बढ़ाता है। और जाहिर है कि झूठी दौलत और झूठी इज्जत कहां तक साथ देगी उसका, दुनिया में चाहे कुछ काम आ जाए लेकिन मरने के बाद तो सिवाय बर्बादी और हलाकत के कुछ नहीं। और ये अगर सच्चाई का रास्ता उसके पास है तो बहुत से गुनाहों से बच जाएगा और सीधा चलता चला जाएगा। इसी तरह फरमाया कि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है, और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और बराबर इंसान सच बोलता रहता है और सच को ही अख्तियार करता है, हत्ता के अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिखा जाता है, सच्चा लिखा जाता है। यानी होता क्या है, आदमी पहले मरहले में सोचता है कि छोटी सी बात है, क्या फर्क पड़ता है, जरा सा झूठ है क्या जाता है। पहले मरहले में मामूली बात गलत कहता है, लेकिन फिर होता है कि उसके बाद फिर झूठ का दरवाजा उसके लिए खुलता चला जाता है, फिर बड़ा बड़ा झूठ बोलना शुरू करता है, यहाँ तक कि फिर वो झूठा लिख दिया जाता है। और अगर आदमी सच को इख्तियार करता है, तय कर लेता है कि हमें तो बहरहाल सच बोलना है, कोई मसला भी हो हमें सच बोलना है, तो जब वो हमेशा सच बोलता है, सच को इख्तियार करता है, सच्ची जिंदगी उसकी होती है, तो फिर वो सिद्दीक लिखा जाता है, वो अल्लाह के यहाँ सिद्दीक लिखा जाता है, बावफा लिखा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला के वादों को पूरा करने वाला लिखा जाता है। इसलिए कि अल्लाह ताला वही रास्ता उसके लिए हमवार कर देते हैं, और झूठ बोलने वाला जो होता है, झूठ बोलने वाला, उसके लिए फिर दूसरा रास्ता खुलता है। जैसे आगे फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो झूठ से बचो, इसलिए झूठ जो है ये बुराइयों की तरफ ले जाता है, और बुराइयाँ जहन्नम की तरफ ले जाती हैं। और वहां भी फिर आपने आगे फरमाया कि आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है, झूठ को इख्तियार करता है, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी झूठा लिख दिया जाता है, कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है, यानी बिल्कुल सरासर झूठा लिख दिया जाता है। बच्चा शुरू में जब बात करता है, और बच्चे बहुत से होते हैं जो उसमें झूठ बोलना शुरू करते हैं अपने फायदे के लिए, बच्चे भी झूठ बोलते हैं, जाहिर है ये कि इंसानी फितरत है। अब पहले मरहले में अगर माँ बाप उसकी तरबियत करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो खैर की तरफ आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता खैर की तरफ आ जाता है। और अगर तरबियत नहीं करते तो उसका नतीजा ये होता है कि बुराइयों की तरफ बढ़ता चला जाता है। बाद होता माँ बाप मोहब्बत में बुराइयों पर रोकते नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसका फिर नतीजा क्या होगा। एक वाकया कहीं किसी ने सुनाया कि एक शख्स चोरी का आदी था, डाके डालने शुरू कर दिए बड़े बड़े, यहाँ तक कि एक मरतबा किसी बड़ी ऐसी वारदात में पकड़ा गया और मुकदमा चला, फांसी की सजा हो गई। जब फांसी दी जाने लगी तो एक वह है दस्तूर है, लोग पूछते हैं भाई आखिरी क्या इनकी वह है ख्वाहिश है पूरी कर, उससे पूछा गया भाई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। लोग बड़े खुश हुए कि माँ किसे मिलना चाहता है, ऐसी ख्वाहिश होती है, माँ को लाया जाए। माँ को लाया गया तो उसने माँ जब सामने आई तो कहा करीब आई और करीब आई, माँ बिल्कुल करीब आ गई, और चूंकि ग्रीस में था उसने कहा और करीब आओ। जब बिल्कुल माँ करीब आ गई तो उसने पकड़ के माँ के कान नोच लिए। लोगों ने कहा पागल हो गया है क्या हो गया, माँ को बुलाया आखिरी वक्त में तो कोई मोहब्बत प्यार की बात करता है, ये कान नोच रहा है। उससे कहा गया तो क्या कर रहा है ये, तो कहने लगा कि इसी माँ की वजह से आज ये नौबत आई है कि मुझे फांसी दी जा रही है। शुरू में जब मैं छोटा था तो मैं माँ के बटुए से पैसे निकालता था और कहीं घर में पैसे रखे हैं वो निकाल लेता था, लेकिन माँ ने कभी मुझे टोका नहीं। मैंने उसके बाद बात आगे बढ़ी रिश्तेदारों के की जेबें साफ करनी शुरू कर दी। माँ को पता चलता था उस वक्त, तो उस वक्त भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा कि ये गलत काम है बेटा ऐसा ना करो। यहाँ तक कि मैं बढ़ता गया आगे और एक चोर बन गया, डाकू बन गया। आज उसका नतीजा है कि मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा रहा है। अगर माँ ने मुझे मना किया होता तो आज यहाँ मैं ना पहुंचता। तो होता यह है कि बात एकदम से आखिरी नहीं होती, बात तो शुरू होती है बिल्कुल बहुत हल्की और मामूली जो उसकी शक्लें होती हैं वहां से शुरू होती है। वही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि आदमी सच बोलता है कि सच बोलता रहता है, सच को ही अख्तियार करता है, यहाँ तक कि सिद्दीक हो जाता है, और झूठ बोलना शुरू कर देता है तो शुरू से पहले मरहले में झूठ बोलता है। बहुत छोटी छोटी बातें होती लेकिन जब मिजाज बिगड़ गया तो वो बात आगे बढ़ती चली जाती, यहाँ तक कि फिर वो कज्जाब लिख दिया जाता है। और ये हर चीज के बारे में है। आदमी नेकी के अपने आप को आदि बनाएगा तो नेक इंसान शुमार किया जाएगा, बुराइयों की तरफ जाएगा शुरू में सोचेगा छोटी सी बात है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन याद रखो वही छोटी बात होती है जो उसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बात तक ले जाती है। इसी तरह निगाहों की हिफाजत है। आदमी निगाहों की हिफाजत ना करे तो क्या होगा उसका नतीजा, हदीसों में इशारे हैं उसके कि फिर उसको आखिरी बुराई तक पहुंचा देंगे। और अगर पहले मरहले में उसने अपने ऊपर रोक लगाई तो उस पर उसके लिए रुकना और बचना बुराइयों से आसान हो जाएगा। وآخر دعوانا الحمد لله